प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी धन का मोह।
गुस्से से कांपते हुए वृंदावन कुंडू ने अपने पिता के पास आकर कहा, मैं इसी समय आपसे विदा चाहता हूँ। उसके पिता जगन्नाथ कुंडू के चेहरे पर नफरत और गुस्से के मिले जुले भाव भर आए। वे बोले, अरे खुद गरज, अरे उपकार न मानने वाले, तेरे पालन पोषण पर मैंने जो व्यय किया है उसका भुगतान करके ही ऐसी धमकी देना। जगन्नाथ के घर का जिस प्रकार का खान पान था उस पर कुछ ज्यादा व्यय नहीं होता था। पुराने सिद्धांतों और रीति रिवाजों की दुहाई देकर जगन्नाथ बाबू कम खर्च करना पसंद करते थे। जब तक वृंदावन की शादी नहीं हुई थी उसका खर्चा जैसे तैसे चलता रहा, किंतु शादी के बाद उनका अल्प व्यय आत्मसंतोष वाला सुंदर सिद्धांत उसे पसंद नहीं आया। उसने पिता के उस आदर्श की अवहेलना करनी आरंभ कर दी। उसके विचार सांसारिक भोग विलास के संबंध में आध्यात्मिक से शारीरिकता की तरफ बदलते जा रहे थे और खान पान की कमी, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि जो कष्ट भी सामने आते हैं उससे उन्हें सहना पसंद न करके संसार के दूसरे व्यक्तियों के आचरण का अनुकरण करना शुरू कर दिया था। जब से वृंदावन ने अपने पिता के बनाए हुए उच्च आदर्शों को त्याग कर अपने नए आदर्शों पर चलना शुरू किया तभी से पिता पुत्र में मनमुटाव होने लगा। इस मनमुटाव की सीमा तब समाप्त हो गई जब एक बार वृंदावन की पत्नी काफी रुग्ण हो गई। वृंदावन के पिता ने उसके इलाज के लिए एक साधारण वैद्य को बुलाया। यहां तक का व्यवहार भी सहन करने के योग्य था, किंतु जब वैद्य ने रोगिणी के लिए एक ज्यादा मूल्य की औषधि मंगाने का अनुरोध किया तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि वैद्यनाथ अयोग्य और वैद्य के नियमों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। बस उसने उसी वक्त उन्हें घर से निकाल दिया। वृंदावन ने पहले तो पिता से बहुत विनती की कि औषधि मंगा लें। पिता के न मानने पर लड़ाई भी की लेकिन पिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर में जब पत्नी का देहावसान हो गया तो वृंदावन क्रोधित हो उठा। उसने अपने पिता को उसका हत्यारा मान लिया। जगन्नाथ ने स्वभाव के अनुसार उसको समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो, क्या लोग महंगी दवाएं खाकर नहीं मरते? यदि महंगी दवाएं ही व्यक्ति को जीवित रख सकती तो बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ और दादी भी मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। बहू मर गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? समय आने पर हर व्यक्ति को यह नश्वर शरीर छोड़ना पड़ता है। वृंदावन यदि मूर्ख या नासमझ होता तो हो सकता था कि वो इन बातों से कुछ ढांढस प्राप्त करता, परंतु वो नई पीढ़ी का था। नई पौध नया खून और नई पौध का चरित्र इतना खराब हो चुका है कि वो पुराने ढंग पर मरना पसंद नहीं करती। जिन दिनों की ये घटना है उन दिनों अंग्रेज भारत में नए नए आए थे, किंतु उस वक्त भी इस देश के बड़े बूढ़े अपनी अपनी संतान के स्वभाव विरुद्ध ढंग पर हैरानी और असमर्थता प्रकट किया करते थे और आखिर में जब उनकी एक न चलती तो अपने मुंह से लगे हुए हुक्कों से ढांढस प्राप्त करने का प्रयास करते। वास्तविकता ये है कि जिस वक्त मामला चरम सीमा पर पहुंच गया और वृंदावन से सहन नहीं हुआ तो उसने गुस्से तथा असमर्थता के साथ अपने पिता से पृथक होने की बात कही। पिता ने बहुत समझाया, धमकाया, परंतु वो टस से मस नहीं हुआ, दृढ़ रहा। पिता ने उसे दृढ़ देखकर उसी वक्त घोषणा करते हुए कहा, चाहे देवता मेरे ढंग को गोहत्या के समान क्यों न समझे, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि तुम्हें अपनी धन संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। यदि मैं तुम्हारे एक भी रुपए पैसे को हाथ लगाऊं तो उस व्यक्ति से भी नीच हो जाऊंगा जो अपनी माँ को बुरी नजर से देखता है, वृंदावन के मुंह से गुस्से में निकल गया। गांव वालों ने अपने जैसे विचारों के लंबे चौड़े झगड़े के बाद उस छोटे से परिवर्तन भरे वाद विवाद को संतोषपूर्वक देखा। चूंकि जगन्नाथ ने अपने पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था इसलिए हर व्यक्ति उसे ढांढस देने का प्रयास करने लगा। वे सब इस बारे में एकमत थे कि केवल पत्नी के लिए पिता के साथ वाद विवाद करने का नजारा इस नए युग में ही देखा जा सकता है। इसके संबंध में वे खुद जो कारण बताते थे वे भी बहुत असंबद्ध थे। उनका कहना था कि यदि किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी आसानी से दूसरी प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि पिता मर जाए तो संसार भर के ऐशो आराम के बदले में भी वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात में संशय नहीं कि उनका उपदेश हर तरह से ठीक था, किंतु दूसरा पिता प्राप्त करने का दुख शायद उस मार्ग से विचलित पुत्र को प्रभावित न करता। यदि ऐसा मौका आता तो वो उसे भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेता। वृंदावन से दूर होने की पीड़ा उसके पिता जगन्नाथ को जरा भी महसूस नहीं हुई। इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो ये कि उसके जाने के बाद घर का खर्च कम हो गया, दूसरे हृदय से एक भारी बोझ उतर गया। उसे हर वक्त इस बात का डर रहता था कि मेरा पुत्र मुझे जहर देकर मार न दे। जब कभी वो अपना थोड़ा सा भोजन करने बैठता तो यही विचार उसे व्यथित कर देता कि कहीं इसमें जहर मिला हुआ तो नहीं है। यही चिंता किसी सीमा तक वृंदावन की पत्नी का देहावसान होने पर दूर हो गई थी, किंतु अब वो बिल्कुल ही नहीं रही। इतना सब होने के बाद भी वृद्ध जगन्नाथ के जड़ हृदय में एक कमजोरी बाकी थी। वृंदावन जाते वक्त अपने साथ अपने 4 वर्ष के पुत्र गोकुलचंद को भी ले गया था। चूंकि उसके भोजन और कपड़ों का व्यय बहुत कम था, इसलिए जगन्नाथ को उससे बहुत लगाव था। वे दोनों चले गए तो सबसे पहले पीड़ा और पछतावे की अपेक्षा उसने अपने मन में ये हिसाब लगाया कि इन दोनों के चले जाने से खर्च में कितनी कमी हो जाएगी, इस बचत की वार्षिक राशि कहाँ तक पहुँचेगी और इस बचत को यदि किसी रकम का सूद समझा जाए तो उसका मूलधन कितना हो पाएगा। जब तक गोकुलचंद घर में था वो अपनी चतुराई से जगन्नाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखता था, परंतु उसके जाने पर थोड़े दिनों में ही वृद्ध को ऐसा महसूस होने लगा कि घर में सन्नाटा छा गया है। इससे पहले जिस वक्त जगन्नाथ पूजा अर्चना में मग्न होता तो गोकुलचंद उसे छेड़ा करता, भोजन करते वक्त उसके आगे से रोटी या चावल उड़ाकर भाग जाता और खुद खा लेता, और जब वो आय व्यय का हिसाब लिखने बैठता तो उसकी दवात लेकर दौड़ जाता। किंतु अब उसके जाने के बाद ये सब बातें भी खत्म हो गईं। जीवन में रोजाना का कामकाज उसे बोझ लगने लगा। उसे ऐसा अनुभव होता था कि इस प्रकार का आराम भविष्य के संसार में ही सहन किया जा सकता है। जब कभी वो गोकुलचंद की चंचलता को याद करता और रजाइयों में उसके हाथों के चित्रों या दरी पर कलम दवात से उसके बनाए हुए भद्दे चित्रों को देखता तो उसका हृदय व्यथित हो जाता। जगन्नाथ को अपने शयन कक्ष में एक कोने के अंदर पड़ी हुई पुरानी धोती के टुकड़े नजर आए तो अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये वो धोती थी जिसे गोकुलचंद ने 2 साल के थोड़े समय में फाड़ दिया था। इस पर जगन्नाथ ने उसे डांटा और बुरा भला कहा था, किंतु अब उसने इन टुकड़ों को उठाकर सावधानी पूर्वक अपने बॉक्स में रख लिया और इसकी शपथ खा ली कि यदि गोकुलचंद उसके जीवित रहते हुए कभी लौट कर आया तो चाहे वो हर साल एक धोती फाड़े वो उससे कभी नाराज नहीं होगा। परंतु गोकुलचंद को तो लौट कर आना ही नहीं था न आया। जगन्नाथ दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा था और उसको खाली घर डरावना नजर आने लगा। आखिर में स्थिति यहां तक पहुंची कि वो आराम से घर में बैठ नहीं पाता था। दोपहर को जब गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में विश्राम करते तो जगन्नाथ नारियल हाथ में लेकर गलियों में घूमता नजर आता। गांव के लड़के जब कभी उसे अपनी ओर आता देखते तो खेलना छोड़कर दूर जा खड़े होते और इस प्रकार की पद्य पंक्ति गाने लगते जिसमें एक स्थानीय कवि ने बूढ़े जगन्नाथ के मिलनसार स्वभाव की तारीफ की थी। कोई आदमी डर के कारण उसका वास्तविक नाम इस डर से जबान पर नहीं लाता कि कहीं उसे उस दिन अन्न जल त्यागना ना पड़े, इसलिए लोगों ने उसके कई प्रकार के नाम रख दिए थे। बूढ़े उसे जगन्नाथ कहा करते थे, परंतु पता नहीं छोटे लड़के उसे चिड़ियल क्यों कहते थे। हो सकता है इसकी वजह ये हो कि उसकी चमड़ी सूखी और शरीर रक्तहीन नजर आता था। इन्हीं कारणों से वो भूत प्रेत जैसा समझा जाता था। एक दिन दोपहर को जब जगन्नाथ रोजाना की भांति गांव की गलियों में आम के छतनारे पेड़ों के नीचे अपना नारियल हाथ में लिए घूम रहा था तो उसने देखा एक लड़का जो देखने में अनजाना सा लग रहा था गांव के लड़कों का मुखिया बना हुआ है और उन्हें कोई नई शरारत समझा रहा है। उसके महान चरित्र और उसकी तेज बुद्धि से प्रभावित होकर सब लड़कों ने उसे अपना मुखिया मान लिया था। दूसरे लड़कों की तरह वो बूढ़े जगन्नाथ को अपनी तरफ आता देखकर डर से भागा नहीं बल्कि उसके निकट जाकर चादर झाड़ने लगा। उसी वक्त उसमें से एक जीवित छिपकली निकलकर बूढ़े के शरीर पर गिरी और उसकी पीठ की तरफ से नीचे उतरकर जंगल की तरफ भाग गई। डर से बूढ़े के हाथ पैर कांपने लगे। ये देखकर सब लड़के खुशी से शोरगुल करने लगे। बूढ़ा जगन्नाथ बड़बड़ाता और गालियां देता हुआ दूर निकल गया। उस भाग दौड़ में वो अंगूठा जो प्रायः उसके कंधों पर पड़ा रहता था अचानक गायब हो गया और दूसरे ही पल उस अनजान लड़के के सिर पर बंधी हुई पगड़ी के रूप में नजर आने लगा। लड़के की तरफ से इस प्रकार की कोशिश देखकर जगन्नाथ पहले तो कुछ परेशान हुआ, फिर वो गांव वालों के रोजाना के तिरस्कार से इस प्रकार पराजित होते देखकर खुश भी हुआ। काफी दिनों से लड़के उसकी छाया देखकर ही दूर भाग जाते थे और उसे उनसे बोलने तथा बातचीत करने का मौका ही नहीं मिलता था। अनजाना लड़का इस शरारत के बाद दूर भाग गया था, किंतु बहुत से वचन और ढांढस देने के बाद वो उस बूढ़े के निकट आया। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। पुत्र, तुम्हारा नाम क्या है? नेताई पाल। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं घर से भाग कर आया हूँ। घर से क्यों भागे थे? मेरा पिता मुझे विद्यालय जाने को कहता था। जगन्नाथ के हृदय में विचार आया, ऐसे समझदार लड़के को विद्यालय भेजना कैसी बेकार बात है। भविष्य के परिणाम की तरह से आंख मूंद कर रहने वाला वो पिता कैसा होगा जो इसे विद्यालय भेजना चाहता था। कुछ देर बाद वो कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे घर रहना चाहोगे? लड़के ने जवाब दिया, हाँ। उसी दिन से वो नेताई पाल उसके घर रहने लगा। उसे घर में जाते हुए कोई डर नहीं लगा। इतना ही नहीं बल्कि उसने अपने कपड़े और भोजन के बारे में ऐसे बिना डरे कई प्रश्न पूछने शुरू कर दिए जैसे वो उस घर में कई सालों से रहता आ रहा हो। यदि कोई चीज उसकी मर्जी से नहीं होती तो वो जगन्नाथ से रुष्ट हो जाता। जगन्नाथ अपने पुत्र को तो डरा धमका भी लेता, परंतु उसे वश में लाना कठिन था। उसे उसकी प्रत्येक बात माननी पड़ी ताकि वो भी कहीं भाग ना पाए। गांव के लोग हैरान थे कि जगन्नाथ ने नितई पाल को क्यों इस तरह सिर पर चढ़ा रखा है। ये बात सभी जानते थे कि जगन्नाथ अब कुछ दिन या कुछ सप्ताह का मेहमान है और वे इस बात को सोचकर अधिक व्यथित थे कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी यही लड़का होगा। वे सभी इस बात पर लड़के से घृणा करने लगे थे। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि लड़के को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, परंतु जगन्नाथ उसका ध्यान इस प्रकार रखता मानो वो उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु हो। कभी कभी लड़का धमकी देकर कहता, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। ऐसे मौके पर बूढ़ा जगन्नाथ लालच का जाल बुनकर कहता, मैं अपनी सारी संपत्ति तुमको ही दूंगा। लड़का हर तरह से कम उम्र का था, तब भी इस वचन की उपयोगिता से भली भांति परिचित था। गांव वालों से और कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने उस लड़के के पिता के संबंध में जांच पड़ताल करनी शुरू की। उनको ये सोचकर बहुत पीड़ा होती थी कि उसके माता पिता उसकी याद में व्यथित होंगे। लड़का बहुत चंचल और कठोर है जो उन्हें इस प्रकार छोड़कर भाग आया। वे इसे न जाने कितनी ही गालियां देते होंगे, किंतु ये सब बातें वे जिस आवेश में करते थे उससे मालूम होता था कि वे न्याय नहीं घृणा से काम ले रहे हैं। एक दिन बूढ़े को किसी राह चलते व्यक्ति से पता चला कि दामोदर पाल अपने पुत्र को ढूंढता हुआ निकट के गांवों और कस्बों में घूम रहा है और कुछ ही समय में वो इस गांव में पहुंच जाएगा। नितई ने जब ये बात सुनी तो सहज भाव से उसके हृदय के प्रेम का आवेश आया। वो आकुलता या परेशानी की स्थिति में धन संपत्ति छोड़कर अपने पिता के पास जाने को व्याकुल हो गया। जगन्नाथ ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब लड़के ने हट नहीं छोड़ा तो उसने कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हें मारेगा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह छिपा दूं कि किसी को भी तुम्हारा पता नहीं मिल पाएगा, यहां तक कि गांव वाले भी ढूंढ नहीं पाएंगे। इस बात से लड़के के हृदय में हैरानी उत्पन्न हुई और वो कहने लगा, बाबा मुझे कहाँ छिपाओगे? वो जगह तो मुझे भी दिखाओ। यदि वो जगह मैं इस समय दिखाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा। रात्रि हो जाने दो। बच्चों में विस्मय उत्पन्न करने वाली जगह देखने की तीव्र लालसा होती है। नितई भी उसी प्रकार ये बात सुनकर खुश हुआ। उसने अपने हृदय में सोचा कि जब मेरे पिता मुझे ढूंढने के बाद लौट जाएंगे तो मैं दौड़कर लड़कों के साथ उस जगह पर आंख में चौनी खेला करूंगा और कोई जान भी नहीं पाएगा कि मैं कहाँ छिपा हूँ। मैं वास्तव में उस वक्त बड़ा मजा आएगा। पिताजी सारा गाँव छान मारेंगे और मुझे कहीं नहीं पाएंगे, तो बहुत मजा आएगा। दोपहर के वक्त जगन्नाथ लड़के को थोड़ी देर के लिए मकान में बंद करके कहीं चला गया। उसके लौटने पर नेताई ने उससे इतने प्रश्न पूछे कि वो दुखी हो गया। आखिर में जब रात्रि होने लगी तो नितई कहने लगा, बाबा अब तो वो जगह मुझे दिखा दो। अभी रात्रि नहीं हुई है, जगन्नाथ ने कहा। थोड़ी देर बाद लड़के ने फिर कहा, बाबा अब रात बहुत हो चुकी है, अब तो चलो। जगन्नाथ ने धीरे से कहा, अभी गांव के लोग सोए नहीं हैं। नितई फिर थोड़ी देर रुककर बोला, बाबा इस वक्त तो सब लोग सो गए हैं, अब तो चलो। रात बहुत बीत चुकी थी। वो लड़का कभी इतनी देर तक जागा नहीं था, इसलिए उसे जागते रहने में बहुत मुश्किल हो रही थी। नींद को आंखों से दूर धकेलने के लिए उसे बहुत परिश्रम करना पड़ रहा था। आखिर में आधी रात के वक्त जगन्नाथ लड़के की बाजू पकड़कर गांव की अंधेरी गलियों में मार्ग ढूंढता हुआ बाहर निकला। सब दिशाएं मौन थीं, चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता तो गांव के दूसरे कुत्ते भी उसके साथ मिलकर भौंकना शुरू कर देते। इसके अलावा कहीं कहीं उसके पांव की आहट से कोई पक्षी पेड़ की टहनी से पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता। नितई डर से कांप रहा था, किंतु जगन्नाथ ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। कई खेतों में से गुजरकर आखिर में ये लोग वन में दाखिल हुए। यहाँ एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा हुआ था, जिसमें किसी भी देवता की मूर्ति नजर नहीं आती थी। नितई ने उसे देखकर उदास भाव से कहा, क्या यही जगह थी? ये जगह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। ऐसी जगह में उसके लिए किसी प्रकार का कोई नयापन नहीं था। जब से वो घर से भागा था, कई बार ऐसे खंडहर मंदिरों में रात्रि गुजार चुका था। इतना होने पर भी आंख मिचौली खेलने के लिए ये जगह ठीक ही थी, अर्थात ऐसा कि उसके साथ खेलने वाले लड़के वहां उसे ढूंढ ना पाएंगे। जगन्नाथ ने जमीन के बीच से एक पत्थर की सिल उठाई। उसके नीचे हैरानी में पड़े लड़के को एक तहखाना नजर आया, जिसमें एक धीमा सा दीपक जल रहा था। डर और हैरानी दोनों बातें उसके हृदय पर जमी हुई थी। भीतर एक बांस की सीढ़ी खड़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा, नितई भी उसके पीछे उतरने लगा। नीचे उतरकर लड़के ने यहां वहां देखा तो उसे अपने चारों तरफ पीतल के टोकने पड़े हुए नजर आए। उसके बीच में एक आसन बिछा हुआ था और सामने थोड़ा सा सिंदूर, घिसा हुआ चंदन, कुछ जंगली फूल और पूजा की बाकी सामग्री रखी हुई थी। लड़के ने उत्सुकतावश उन टोकनों में से कुछ के भीतर हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो पता चला उसमें रुपए और सोने की मोहरें भरी हुई हैं। इतने में बूढ़े जगन्नाथ ने नितई से कहा, नितई मैंने तुमसे कहा था ना मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कोई ज्यादा संपत्ति नहीं है, किंतु जो कुछ भी है वो इन पीतल के टोकनों में भरा है और ये सब मैं आज तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। नितई खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाकई क्या तुम इनमें से एक रुपया भी अपने लिए नहीं रखोगे? बूढ़े ने जवाब दिया, यदि मैं इसमें से कुछ रख लूं तो ईश्वर करे मेरा वो हाथ कोढ़ी हो जाए, किंतु ये संपत्ति मैं तुम्हें एक शर्त पर देता हूँ। यदि कभी मेरा पोता गोकुल चंद या उसका भी पोता या परपोता या उसकी संतान में से कोई आदमी भी इस मार्ग से होकर जाए तो तुम्हारे लिए जरूरी होगा कि ये सारी संपत्ति उसके हवाले कर दो। लड़के ने थोड़ा सोचा और निश्चय के साथ विचारा कि बूढ़ा पागल हो गया है, फिर कहने लगा, ठीक है ऐसा ही करूंगा। जगन्नाथ ने कहा, बस तो इस जगह पर बैठ जाओ। क्यों, तुम्हारी पूजा की जाएगी? लड़के ने हैरान होकर पूछा, पूजा? कैसी पूजा और क्यों? इसलिए कि यही रीति है। लड़का उछलकर फौरन आसन पर बैठ गया। बूढ़े जगन्नाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, भावों के बीच सिंदूर की बिंदी लगा दी, जंगली फूलों की माला उसके गले में डाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। बेचारा नितई देवता की तरह आसन पर विराजमान ऊंघता रहा, क्योंकि उसकी पलकें नींद से भारी हो रही थीं। आखिर में उसने घबराए हुए कहा, बाबा। परंतु जगन्नाथ बिना कोई जवाब दिए ही मंत्र पढ़ता रहा। आखिर में मंत्रों का सिलसिला खत्म हुआ और जगन्नाथ ने बहुत मुश्किल से एक टोकने को खींच कर लड़के के समक्ष रखा और ये शब्द उसके मुंह से बलपूर्वक कहलवाए, मैं सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सारी संपत्ति को गोकुलचंद कुंडू या वृंदावन कुंडू, वल्द जगन्नाथ कुंडू या गोकुलचंद कुंडू के पुत्र, पौत्र, परपौत्र या उसकी संतान के किसी आदमी को जो इसका वास्तविक और योग्य उत्तराधिकारी होगा दे दूंगा। कई बार शब्दों के उच्चारण में नादान लड़के की चेतना जाती रही और गला सूखने लगा। जैसे तैसे ये रस्म खत्म हुई। गुफा की हवा, दीपक के धुएं और उन दोनों की सांस के कारण बुरी प्रतीत होने लगी। नितई को अपना गला मिट्टी की तरह सूखा और हाथ पैर जलते हुए महसूस हो रहे थे। बेचारे का दम घुटने लगा था। दीपक की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यहां तक कि आखिरी झोंका खाकर बुझ गई। इसके बाद अंधकार। नितई को ऐसा लगा मानो बूढ़ा शीघ्रातिशीघ्र सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। उसने घबराकर पूछा, बाबा तुम किधर जा रहे हो? जगन्नाथ ने निरंतर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जवाब दिया, मैं अब जाता हूँ, तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं तलाश पाएगा। वृंदावन के पुत्र और जगन्नाथ के पौत्र गोकुलचंद का नाम याद स्मरण रखना। इसके बाद उसने ऊपर जाकर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध और दयनीय भाव में कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ डर लगता है। जगन्नाथ ने उसकी ओर ध्यान न देते हुए गुफा के मुंह पर पत्थर की शिला रख दी। इसके बाद दोनों जंघाओं को मोड़कर झुका और अपने कान पत्थर से निकट लगाकर सुनने लगा। भीतर से ध्वनि आई, बाबा जी बाबा जी, फिर किसी भारी चीज के जमीन पर गिरने की ध्वनि सुनाई दी। इसके पश्चात चुप्पी छा गई। इस प्रकार अपनी संपत्ति उसके हवाले कर बूढ़े जगन्नाथ ने शीघ्र पत्थर के ऊपर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उस पर उसने जीर्ण शीर्ण ईंटें और चूना रख दिया और फिर मिट्टी बिछाकर उसमें जंगली घास और बूटियों की जड़ें गाड़ दी। रात्रि लगभग खत्म हो चुकी थी, परंतु वो उस जगह से हटकर घर न जा सका। रह रहकर अपना कान जमीन पर लगाता और ध्वनि सुनने का प्रयास करता। ऐसा अनुभव होता था कि अब भी उस गुफा के भीतर या जमीन की अथाह गहराइयों में से एक पीड़ा युक्त क्रंदन सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा अनुभव होता था कि रात्रि में आसमान पर केवल वही एक ध्वनि छाई हुई है और संसार के सभी लोग उस ध्वनि से जागकर बिस्तरों में बैठे उसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं। पागल बूढ़ा जोश में आकर ज्यादा मिट्टी डालता जाता था। वो चाहता था कि उस ध्वनि को दबा दे, किंतु इस पर भी वो रह रहकर ध्वनि उसके कानों में आ रही थी, बाबा जी हाय बाबा जी। उसने पूरी ताकत से जमीन पर पैर मारकर चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो, लोग तुम्हारी ध्वनि सुन लेंगे। फिर भी उसे मालूम हुआ कि हाय बाबा जी हाय बापू की ध्वनि रह रहकर सुनाई दे रही है। इतने में सूर्योदय हुआ और जगन्नाथ कुंडू मंदिर को छोड़कर खेतों की तरफ आ गया। वहां भी किसी ने उसे पीछे से आवाज दी, बापू। बेचैनी के कारण जगन्नाथ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पुत्र वृंदावन था। वृंदावन कहने लगा, मुझे पता चला है कि मेरा पुत्र आपके घर में छिपा हुआ है, उसे मुझे सौंप दो। ये सुनकर बूढ़े की आंखें बड़ी हो गईं, मुंह चौड़ा हो गया। उसने घूमकर पूछा, क्या बोला, तुम्हारा पुत्र? वृंदावन ने कहा, हाँ मेरा पुत्र गोकुलचंद, अब उसका नाम नितई पाल है और मैंने अपना नाम दामोदर पाल प्रसिद्ध कर रखा है। तुम्हारी मनहूसी और कंजूसी की बातें चारों ओर इतनी ज्यादा फैल चुकी थीं कि मजबूर होकर मुझे अपना वास्तविक नाम बदलना पड़ा, वरना हो सकता था कि लोग हमारा नाम लेने में हिचकिचाते। बूढ़े ने धीरे धीरे दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां इस तरह कपकपा रही थीं मानो वो हवा में किसी अदृश्य चीज को पकड़ने का प्रयास कर रही हों। फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अपने पुत्र की बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ पुराने मंदिर के निकट ले गया और पूछने लगा, तुम्हें इसके भीतर से विलाप करने की आवाज सुनाई देती है? वृंदावन ने जवाब दिया, नहीं। बूढ़े ने कहा, ध्यानपूर्वक सुनो, कोई ध्वनि भीतर से बाबा जी कहती सुनाई देती है? वृंदावन ने फिर कान लगाकर जवाब दिया, नहीं तो। इससे बूढ़े जगन्नाथ की परेशानी काफी हद तक दूर हो गई, साथ ही उसके दिमाग ने भी उसे जवाब दे दिया। उस दिन के बाद उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो गांव में आवारा घूमता और लोगों से पूछा करता, तुम्हें किसी के विलाप करने की आवाज़ सुनाई नहीं देती? लोग उसकी विक्षिप्तता पर हंसने लगते। इसके लगभग 4 साल बाद जगन्नाथ मृत्युशैया पर पड़ा था। संसार का प्रकाश धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल होता जा रहा था और श्वास लेने में कठिनाई हो रही थी। अचानक वो पागलपन की स्थिति में उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए और हवा में इस प्रकार चलाने लगा मानो किसी वस्तु को ढूंढ रहा हो और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसने उठाई? उस डरावने बंदी गृह में से, जहां न देखने को रोशनी और न श्वास लेने के लिए हवा थी, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी न पाकर वो फिर अपनी मृत्युशैया पर गिर पड़ा और जहां संसार की स्थायी आंख मिचौली के खेल में कोई छिपने वाला पाया नहीं गया, उस श्रेणी में वो अदृश्य हो गया। वो लालची अपने लालच की वजह से अपने ही वंशज को खा गया।
वाचक स्वर संज्ञा टंडन, प्रस्तुति
अर्पा रेडियो।